ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔ سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے۔ جیسے صبح ہم نے انٹرو میں آپ کو بتایا تھا کہ آج دنیا کے مختلف ممالک سے ہمیشہ کی طرح ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے، اور آج کے ہمارے جو اسپیشل، ہر دفعہ ہمارے ایک اسپیشل مہمان ہوتے ہیں، ان میں جو ہمارے آج اسپیشل مہمان ہیں راشد نصر اللہ صاحب ہیں، جو کہ برطانیہ کی فضاؤں میں موجود ہیں۔ یہ خود بھی اپنے پروگرام بناتے رہتے ہیں، خود بھی ہوسٹ ہیں، ہم نے بہت دفعہ ان کو دیکھا سوشل میڈیا پر، تو ہمارا دل چاہا کیوں نہ ان سے بات کریں۔ یہ بہت بات کرتے ہیں، بہت انالائز کرتے ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں، تو کیوں نہ لائیو ہم ان سے بات کریں۔ تو ہم نے ان سے رابطہ کیا، ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ راشد نصر اللہ صاحب اس وقت برطانیہ کی فضاؤں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راشد، ہم آپ کو ادارہ آپ کی آواز کی ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور کوپن ہیگن کی فضاؤں میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔
بہت شکریہ سر، آپ کی محبت کا، آپ کے ناظرین کا، سامعین کا بہت شکریہ۔
راشد، یہاں جس مائک میں اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں، جس اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں دنیا کے بہت سارے لیڈروں نے یہاں بات کی ہے، آن ایئر بات کی ہے، ڈنمارک کے سیاستدانوں نے بات کی ہے، وزرائے اعظم نے بات کی ہے، آپ کے لیڈر جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی بھی آن ایئر بات ہو چکی ہے، دو تین بار یہاں ڈنمارک تشریف لائے، بہت ساری یادیں، بہت ساری چیزوں پہ وابستہ ہیں۔ آج میں آپ سے جاننا چاہوں گا، سب سے پہلے برطانیہ میں کرونا وائرس کا کیا حال ہے؟
جی شکریہ، کرونا وائرس جی برطانیہ میں جو سیکنڈ ویو آئی ہے وہ بہت ہی فیٹل ہے، بڑی ڈینجرس ہے۔ اس میں جو کیجولٹیز ہو رہی ہیں، اموات ہو رہی ہیں، ان کی ریشو جو ہے وہ پچھلی لہر کی نسبت زیادہ ہے۔ اب پچھلے تقریباً 11 دن سے جو ایوریج ہے وہ 1300-1400 لوگوں کی ڈیتھ جو ہے وہ روزانہ ہو رہی ہے، اور یہ پھیلتا جا رہا ہے، اور رات بھی ایوریج جو کیسز کاؤنٹ ہو رہے تھے وہ 30,000 پلس تھے، 30,000 پلس۔ تو اس وقت صورتحال بڑی جو ہے وہ دگرگوں ہے، اور لوگوں میں خوف و ہراس ہے، لاک ڈاؤن کی صورتحال، لوگ باہر نہیں نکل رہے، کیونکہ سیکنڈ ویو میں اموات کے زیادہ ہونے کی وجہ سے خوف و ہراس کی جو فضا ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔
راشد، برطانیہ کے سیاسی حالات کیا ہیں؟
برطانیہ کے سیاسی حالات، اگر آپ یہ پوچھیں گے برطانیہ کے اندر موجود پاکستانی جو سیاست ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے، تو اس پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔
میں پاکستانی سیاست کی بات کر رہا ہوں۔
جی، یہاں آپ کو پتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب موجود ہیں، ایک مقبول ترین سیاسی جمہوری لیڈر ہیں، اور جہاں وہ ہوتے ہیں تو وہ مرکزہ بن جاتا ہے، وہ نیوکلس بن جاتا ہے، وہ جگہ سیاست وہاں سے پھوٹتی ہے، اور یہی صورتحال کچھ اس وقت ہے۔ لندن میں میاں صاحب موجود ہیں اپنے علاج کے سلسلے میں، اور انہوں نے کچھ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی سٹارٹ کی ہیں آفٹر دا اے پی سی۔ تو یہ ہے کہ بھرپور لیڈ ہو رہی ہے، جی بھرپور لیڈ ہو رہی ہے اس حکومت کے خلاف، اس کے سلیکٹرز کے خلاف۔
راشد، میں آپ سے جاننا چاہوں گا ان کی صحت، سب سے پہلے ان کی صحت کے بارے میں بتائیں۔
صحت جی، میاں نواز شریف صاحب کا علاج آپ کو پتا ہے کہ کرونا سے پہلے بڑے شد و مد سے چل رہا تھا، اس کے بعد کیونکہ این ایچ ایس نے، آپ کو پتا ہے کہ اوور 70 ہیں، اور این ایچ ایس نے اوور 70 افراد کے لیے ایک شیلڈنگ جو چیز تھی وہ انٹروڈیوس کرائی یو کے میں، کہ آپ کوشش کریں، ان کے لیے کوشش تھی، صرف میاں نواز شریف صاحب کے لیے نہیں، جتنے بھی یہاں اوور 70 تھے، کہ ان کے لیے ایک شیلڈ بنا دی جائے، یعنی کہ ان کو گھر پہ زیادہ ٹریٹ کرنے کا اگر کوئی فیزبلٹی ہے وہ کی جائے، رادر دین کہ وہ اپوائنٹمنٹس پہ آئیں۔ اگر بہت ضروری نہیں ہے، جیسے کوئی بلڈ ٹیسٹ لینا ہے یا کچھ ایسی چیز ہے یا کوئی ایسا سکین کرنا ہے جو ہاسپٹل سے ہی ہوگا، وہ تو وہ کروا رہے ہیں، ابھی پچھلے دنوں انہوں نے کروایا ہے، ہارٹ کا سکین تھا۔ تو لیکن اگر ویسے کوئی نارمل اپوائنٹمنٹ ہے تو اس کے لیے آپ ہاسپٹل نہ آئیں، تو آپ کا گھر سے ہی وہ فون پہ اپوائنٹمنٹس ہو جاتی ہیں۔ تو وہ شیلڈنگ جو پروسیس ہے اس کے تحت بی ایم ایم نواز شریف اس طرح سے باقاعدگی سے ہاسپٹل نہیں جا رہے، اور ان کا گھر سے ہی جو ہے وہ علاج زیادہ ہو رہا ہے، سکینز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، لیکن طبیعت جو ہے وہ پہلے کی نسبت تھوڑی بہتر ہے۔
پہلے کی نسبت تھوڑی بہتر ہے، چونکہ ان کے چاہنے والے بہت سارے یہاں موجود ہیں، وہ سن بھی رہے ہیں آپ کو، تو وہ ڈیفینیٹ وہ اپنے کانوں سے بہت ساری باتیں سننا چاہتے ہیں، چونکہ آپ کو بہت دفعہ انہوں نے ان کے نزدیک دیکھا، تو اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے۔
جی الحمدللہ، دعاؤں سے، آپ سب کی دعاؤں سے پورا پاکستان دعائیں کر رہا ہے، اوورسیز پاکستانی دعائیں کر رہے ہیں میاں محمد نواز شریف کے لیے، تو اللہ پاک ان کو مکمل صحت یاب کریں گے اور وہ واپس اپنے ملک جائیں گے ان شاء اللہ۔
راشد، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں یہ براڈ شیٹ ہے کیا، اس پر آپ نے بھی کافی کچھ کہا ہے پہلے۔
جی بیسکلی براڈ شیٹ ایک ڈکٹیٹر نے کالا قانون بنایا نیب کا، جب اس نے کو کیا، آپ کو پتا ہے جب بھی کوئی مارشل لا آتا ہے، جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے، تو وہ آتے ساتھ ہی کچھ ایسے گیمکس کرتا ہے، کچھ ایسے جو جسے شوبدہ بازی کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، تاکہ عوام کو لگے کہ میں 90 دن میں الیکشن کروا دوں گا، کوئی کہتا ہے میں 30 دن میں الیکشن کروا دوں گا، اس نے شوشا چھوڑا کہ میں احتساب کروں گا، احتساب کے نام پہ اس نے بنایا نیب، نیب میں اس نے بھرتی کیے اپنے خاص نمائندے جنرل امجد جیسے لوگ، فاروق آدم خان جیسے لوگ، انہوں نے اپنے مفادات کے لیے ایک کمپنی ہائر کی جس کا نام براڈ شیٹ تھا، انہوں نے ہائر کی صرف اس لیے, اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ بگز نماز کے اندر جو باہر بیرونی ممالک میں کچھ ڈھونڈ کے لائیں. اب وہ ڈھونڈ کے تو کچھ نہیں لائے, کچھ ہوتا تو کچھ نکلتا. تو جب آپ دیکھیں آپ ایک ڈکٹیٹر ہیں, آپ میاں محمد نواز شریف کے بدترین مخالف ہیں, آپ نے ایک بڑی کمپنی اپنی طرف سے ہائر کی, وہ آپ کو 2003 میں آپ کو رپورٹ پیش آپ کرتے ہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں آپ لے کے آئے, تو بھائی وہ کہاں سے لے کے آئیں گے, کہاں سے پیدا کریں گے. خیر آپ نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ ختم کیا, آپ نے 2003 میں ان کے ساتھ کانٹریکٹ ختم کیا, تو یہ کوئی پاکستان تو نہیں ہے تو جہاں پہ آپ ایسے کانٹریکٹ ختم کر دیں گے. وہ کورٹ میں چلے گئے, کورٹ میں جانے کے بعد وہ جو کمپنی تھی براڈ شیٹ وہ تحلیل ہو جاتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے, وہ لکوڈیٹ ہو جاتی ہے. جب وہ ختم ہو گئی تو ایک جعلی بندہ جس کا نام جیری جیمز تھا, اس نے پاکستانی نیب کے ساتھ جب کورٹ میں کیس تھا اس نے ان کے ساتھ کراس بانڈ کیا, لیٹر لکھے, اس نے کہا جی میں براڈ شیٹ ہوں. آپ ان کی نااہلی, غفلت, سستی, نالائکی دیکھیں کہ انہوں نے اس جیری جیمز کے ساتھ کراس بانڈ کیا اور اس کو $1.5 million جو ہے اس کو دے دیا کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ سیٹلمنٹ کرتے ہیں, تو یہ $1.5 million لے لیں. اس کے اوپر انہوں نے پردہ ڈال دیا, بتایا نہیں پاکستانی قوم کو کہ خزانے سے ہم نے $1.5 lakh دیا ہے, $15 lakh. خیر وہ جو اصل براڈ شیٹ تھی وہ کیس جاری رکھے ہوئے, اس نے کہا جی ہم تو جیری جیمز کو جانتے ہی نہیں ہیں, چلے وہ $15 lakh ضائع گیا. اصل جو براڈ شیٹ تھی وہ کیس چلتا رہا. اب آ کے انہوں نے آپ کے جو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ میاں محمد نواز شریف کے جو فلیٹس ہیں آپ وہ لے لیں, تو لیکن جو جج تھا سر اینتھنی ایونز, یہ پھر میں بات کروں گا یہ پاکستان نہیں ہے, اس جج نے کہا بھی وہ کسی بندے کی ذاتی ملکیت ہے, گھر ہے, میں وہ آپ کو کیسے دے دوں, یا پاکستانی ریاست کو کیسے دے دوں, یا براڈ شیٹ کو کیسے دے دوں, وہ تو میاں نواز شریف اور اس کی فیملی کے ہیں, تو اثاثے ہیں, گھر ہیں جہاں وہ رہتے ہیں, تو وہ کیسے آپ کو دیے جا سکتے ہیں. تو آپ کی کس طرح کی بات کرتے ہیں, آپ اس طرح کریں جو پاکستانی امبیسی کا بینک ہے, جو پاکستانی امبیسی جس کو چلا رہی ہے, آپ اس بینک میں جو 4.5 arab rupees پڑا ہے وہ لے لیں. اب آپ یقین کریں $28.7 million کا ٹیکہ صرف اس میں لگایا گیا کہ نواز شریف کے خلاف بوگس ہے, اس کے اوپر آپ نے $15 million LLN & Overy جو لا فرم ہائر کی اس کو دیا, $1.5 million آپ نے وہ جعلی بندے کو دے دیا, $3 million ابھی بھی آپ نے براڈ شیٹ کا دینا ہے. تو بتانے کی بات سر صرف یہ ہے کہ آپ نے وہ میاں نواز شریف کا جو چند ٹکوں کے لیے آپ نے وہ قوم کا اربوں روپیہ ضائع کر دیا, تو یہ ہے وہ براڈ شیٹ. اور اس براڈ شیٹ کے اندر جب پاکستان سے آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ آتے رہے وہاں سے یہاں سے اس سے ملنے, مساوی سے, میں نے مساوی کا انٹرویو کیا تھا, شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو, مساوی نے مجھے خود کہا کہ جب میں لے کے گیا اسے کافی شاپ میں, وہ جو جرنل آیا تھا ساتھ, جد مالک جس کا وہ نام لیتا ہے سو کالڈ, اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اگر $200 million تم ریکور کرتے ہو تو $100 million میری کٹ ہے, میری رشوت ہے, میری جیب میں ڈالو, تو پھر میں تمہیں یہ کانٹریکٹ ابھی کے ابھی دونوں سائن کر دیتا ہوں. یہ تو حال ہے. اس مساوی نے کہا جی چائے کے کافی کے پیسے اپنی پے کرو, تم میں اپنی کے پے کروں گا, میں ایسی گھٹیا ڈیلے نہیں کرتا. تو یہ ہمارا عالم ہے. اور میاں نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے کلین چٹ جو ہے وہ اس کیس میں بھی دی.
راشد کلین چٹ تو ان کو مل گیا, لیکن جو اگر میڈیا دیکھا جائے, پاکستان کا بڑا میڈیا دیکھا جائے, تو وہ ہر روز نئے اتنے کیس بیان کرتے ہیں میاں صاحب پر کہ عام آدمی کی سمجھ سے باتیں باہر ہیں یہ.
جی تو میڈیا چلا کون رہا ہے؟ آپ یہ بھی تو سوچیں کہ جب اسحاق ڈار صاحب پہ, جو فائنانس منسٹر رہے اس ملک کے, اس پہ آپ کہتے ہیں کہ نام نہیں چلانا اسحاق ڈار صاحب کا نیشنل میڈیا پہ, تصویر نہیں دینی, بالکل کوئی ٹکر نہیں چلنا چاہیے, لیکن دوسری طرف جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ خبر ہماری فائدے میں جا سکتی ہے تو پورا دن اسحاق ڈار چلتا ہے, پورا دن اسحاق ڈار کی باتیں چلتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ میڈیا کنٹرول میڈیا ہے, یہ زیر اثر میڈیا ہے, یہ بکا ہوا میڈیا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی خبر, آپ ریسنٹلی آپ نے دیکھا وہ مٹھو اور تیتر کا جو واقعہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, اب آپ دیکھیں کہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ بڑکے مارتے ہیں, آپ کو 35 lakh rupees کے عوض جو ہے وہ جی این این نیوز میں رکھوایا گیا ہے, عمران ریاض خان جو اینکر ہے اس کو رکھوایا ہے, ایک بڑے نے, ایک جین نے, وہ جب آپ کو رکھوایا گیا آپ اس کی سائیڈ کی بات کرتے ہیں, آپ نیشنل ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں مٹھو ہے, وہ پتنگ باز تھا, وہ وہاں قبضہ کرتا ہے, وہ ایک بڑے بندے کا بندہ ہے, میں نام لے دوں گا تمہارا چینل بند ہو جائے گا. وہ جو اینکر ہے عدنان حیدر, وہ بھی جب اس کو کہتا میں سننا چاہتا ہوں, جب نام سن لیا اس کو نکال دیا گیا جاب سے. وائس نوٹس ہیں اس عدنان حیدر کے, وہ رو رہا ہے لوگوں کے آگے, صحافیوں کے آگے اپنے واٹس ایپ میسج بھیج رہا ہے, جی میری سپورٹ میں باہر آئے, جی فلاں ابصار عالم صاحب باہر آئے, حیدر حامد میر صاحب باہر آئے, منزل جہانگیر باہر آئے, ان کو وائس نوٹس لوگوں کو بھیج رہا ہے کہ جی دیکھیں مجھے اسٹیبلشمنٹ نے نوکری سے نکال دیا, یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ آزادی اظہار رائے نہیں ہے پاکستان میں, ہم بات نہیں کر سکتے, سیاستدانوں کے خلاف ہم سارا دن بکواس کرتے ہیں, بولتے ہیں تو تب کوئی نہیں بولتا, ہم نے آج ایک فوجی کے مٹھو کا نام لے لیا تو عذاب آ گیا, ٹویٹر پہ اس کو سپورٹ ملی, ٹویٹر پہ لوگوں نے اس کے حق میں ٹویٹ کی, حامد میر نے کی, منزے نے کی, ابصار نے کی, اور بہت سے بے شبہ لوگوں نے کی. हमने भी उसकी सपोर्ट की कि यार इसको नौकरी से निकाल दिया, ये कौन सा तरीका है। जब उसको उन्होंने बहाल किया और साथ डंडा मारा उसको कि भाई तुम चैनल पे आके कहो कि मुझे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो नौकरी से नहीं निकाला, तो ये हाल है, ये सूरत हाल है कि वो टीवी पे आके कह रहा है कि नहीं जी मैं तो किसी मिट्टू को नहीं जानता, मुझे तो किसी ने नौकरी से नहीं निकाला, एक ग्रुप है जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करता है। भाई तुम खुद तो बकवास कर रहे थे लोगों के आगे, तुम खुद तो कह रहे थे कि जी मुझे निकाल दिया नौकरी से, मुझे वॉइस नोट भेज रहे थे, मुझे सब कुछ कर रहे थे, बाद में तुम कह रहे हो कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट तो ठीक चल रही है। थोड़ी देर बाद जो वो गिलत्तर साहब है, इमरान रियाज साहब, वो भी आ जाते हैं, वो भी अपना बयान जारी करते हैं जी मेरी नाअहली थी, मेरी गफलत थी, मेरी कम अकली थी कि मैंने मियां मिठू का नाम लगा दिया है, मियां मिठू तो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, मुझे तो मैं तो जानता ही नहीं वो कब्जा माफिया। क्यों, जब आपने एक फौजी का नाम ले लिया या फौजी के किसी रिश्तेदार का नाम ले लिया तो आग लग गई। जब आप 77 सालों में इस मुल्क के अंदर सियासतदानों को बदनाम करते रहे, मुल्क में सियासतदानों, जमहूरी सियासतदानों के ऊपर अरबों रुपए के झूठे इल्जाम लगाते रहे, जब आप उनके बच्चों को मलाइन करते रहे, जब आप बड़े बड़े ओहदों पे बैठ के उनको जलीलो ख्वार करते रहे, तब तो आपने किसी ने माफी नहीं मांगी, तब तो आपने नहीं कहा कि हमने गलत इल्जाम लगाए। अब आज एक फौजी की बात आई है तो आपने साथ ही कह दिया जी गलत इल्जाम लगाए। ये आप जिस कंट्रोल मीडिया की बात कर रहे हैं ये उसके जेरे असर है। आप ARY लगा लें जो सरखेल है इस तमाम बिकाऊ मीडिया का, जो जो झूठी खबर उस चैनल पे चलती है वो मुझे यहाँ बयान करने की जरूरत नहीं है, आप बेहतर जानते हैं।
राशिद, हमने देखा है कि जब हम स्कूल से कॉलेज में गए, सियासत की थोड़ा शऊर आया, तो कॉलेज में जब हमने देखा कि ये जो वकील हजरात होते हैं ये दरमियाने दर्जे के लोग होते हैं, मतलब अमीरों में इनका शुमार नहीं होता, बस दाल रोटी खाने वाले लोग, तो इसी तरह क्लर्क जो होता था वो भी इसी टाइप का होता था, इसी तरह जो सहाफ़ी था वो भी दरमियाने का होता था, तो बड़े जो मीडिया मालकान होते थे वो भी इतने अमीर नहीं होते थे। राशिद, हमारे सामाइन को बताएं कि आज एंकर जो हैं वो इतने ज़्यादा अमीर हो गए हैं, सबके रेस्ट हाउस हैं, जितने भी बड़े एंकर हैं या जितने बड़ी अखबारात में या जितने बड़े TV चैनल्स में काम करते हैं, ये अमीर तरीन शख्सियात में इनका शुमार होता है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है?
जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हम देखते थे, आपने बड़ी अच्छी याद करवाई कि स्कूल से कॉलेज के जमाने में बहुत ज्यादा लिखा होता था, मोटरसाइकिल के पीछे प्रेस लिखा होता था तो हमें पता चल जाता था ये बंदा या तो किसी अखबार में है, चैनल्स का तो इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। तो आप मुझे बताएं, आज आप ए से शुरू हो जाएं और जेड तक चले जाएं, 99% जो सहाफी हैं जो आपके टीवी पे बैठते हैं उनके फार्म हाउसेज हैं, बड़े बड़े घर हैं। ये इमरान रियाज की मिसाल ले लें, पिछले दिनों उसकी वीडियो भी चली थी वो गीले तीतर वाली, इसका घर आप देखें, वो सहाफी का घर कहीं से लगता है? वो तो एक महल है। आप आफ्ताब इकबाल को देख ले, आप नाम लेते जाएं, आप किसी भी सहाफी का घर देख ले, आप हसन निसार को देख ले, वजह क्या है? ये तो एवरेज वहां रिहाइश का तरीकाकार नहीं है पाकिस्तान में, एक आम आदमी इतने इतने बड़े महलों में तो पाकिस्तान में नहीं रहता, आम आदमी तो पिस गया है। वजह सर वही है जो फिलहाल हो रहा है मुल्क के अंदर, कंट्रोल्ड मीडिया। आप जब जिस कंट्रोल मीडिया की बात करते हैं तो ये लोग मीडिया है, मीडिया किसी कम्युनिकेशन या सिर्फ तारों से तो नहीं बनता, मीडिया टीवी सेट से तो नाम नहीं है, मीडिया रिमोट का नाम तो नहीं, मीडिया अफराद का नाम है। जब अफराद बिक जाए तो समझ ले मीडिया बिक गया, जब अफराद के मुंह पे पट्टी लग जाए समझ ले मीडिया की जुबान बंदी हो गई। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना जमीर बेचना पसंद किया। आज भी कुछ 1% लोग हैं जो अपने यूट्यूब चैनल्स पे चले गए हैं, आप जानते हैं बेहतर, जिन्होंने अपने YouTube चैनल्स बना लिए, उन्होंने कहा भाई इस जो है जलालत की रोटी से हमें जो है ना वो हमें इससे बेहतर है कि हम अपने कोई दाल रोटी थोड़ी खा लेंगे लेकिन जो अपना जमीर नहीं बेचेंगे। तो वो 1% है लोग, लेकिन जिन्होंने नहीं बेचा, जो दिन रात हुकूमती सिलेक्टर और सिलेक्टेड के तारीफों में क्लबे मिलाते रहते हैं तो उनके महल बनते रहते हैं, दूसरी तरफ ये मुफ्त में नहीं होता, ये आपका मेरा टैक्स पेयर का पैसा है जो इन सहाफियों को सिर्फ सुबह से शाम तक झूठ बोलने के वजह दिया जाता है। तो जाहिर है जब पैसा आएगा तो उसके अगेंस्ट महल बनेंगे, गाड़ियां आएंगी, बंगले बनेंगे, बैंक बैलेंस हो गए और बैरूनी मुल्क जायदादें बनेंगी।
राशिद, आपने देखा होगा कि आप किसी पाकिस्तान में किसी सरकारी अफसर के खिलाफ बात करें तो आपकी पूछ कूछ होती है। हमने देखा है कि पाकिस्तान में जो जितने मीडिया चैनल्स के एंकर्स हैं वो वज़ीर आज़म को डांट रहे होते हैं, मौजूदा या साबका को डांट रहे होते हैं, वो पुलिस ऑफिसर्स को डांट रहे होते हैं, हर किसी को डांट रहे होते हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं, फिर वो कहते हैं हम पर बड़ी पाबंदियां, क्या वजह है ये?
जी बिल्कुल, देखे अब हर कैंप ने अपना बंदा रखा हुआ है, हर कैंप का अपना बंदा है, ISPR के कुछ अपने लोग हैं, नीचे नीचे जो कमांड है उनके कुछ अपने लोग हैं, कोई किसी को रिपोर्ट करता है, कोई सहाफी किसी को रिपोर्ट करता है, जिसको पता है मेरा किला पीछे से मजबूत है वो दूसरे को पड़ जाता है। लेकिन आसान हदफ, अब ये मिठू और मियां मिठू और गीले तितर के बाद समझना 22 करोड़ आवाम के लिए मुश्किल नहीं है कि आसान हदफ सिर्फ सियासतदान है। आप जो मर्जी इल्जाम लगा दें, इतने भोले अवाम है पाकिस्तान के, वो सुनते रहेंगे, वो وہ کہیں گے واہ 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 کیا بات کی آج، اگر وہ پلازا گرایا ہے سیالکوٹ میں تو واہ 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 کیا بات۔ بھائی بات کی طے میں تو جائیں، آپ اتنا تو سمجھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر، ہر کیمپ دوسرے کیمپ کو نیچا دکھانے کے لیے۔ آپ اسی اگر ایک منٹ 45 سیکنڈ کی کلپ کو دوبارہ، تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اینکر عمران ریاض فرما رہے ہیں کہ یار میں نام لے دیتا اگر کوئی صحافی ہوتا، میں نام لے دیتا اگر کوئی سیاستدان ہوتا۔ بھائی اس کا تعلق تو لوگ آرمی چیف سے جوڑ رہے ہیں، میں کیسے نام لوں؟ آپ یہ سوچیں، یہ پاکستان کی 73 سال قسمت کی بدقسمتی ہے، 73 سالہ تاریخ کی جو بدقسمتی ہے کہ سیاستدان کا نام لینا آسان ہے، صحافی کا نام لینا آسان ہے، پبلک سرونٹ کا نام لینا آسان ہے، کسی سول بندے کا نام لینا آسان ہے، لیکن جو مقدس گائے ہے اس کا نام لینا آسان نہیں ہے۔ پھر جن کے لیے آسان نہیں ہے وہ موجیں کرتے ہیں۔
راشد، دیکھیں، موجودہ وزیر اعظم یا سابقہ وزیر اعظم، یا موجودہ آرمی چیف یا سابقہ آرمی چیف، یا جتنے موجودہ جو جج صاحبان ہوتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان، ان کا نام لینے سے کیا پاکستان کی عزت بڑھتی ہے؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گا
نام، ان دا سینس کیا نام، مطلب
نیگیٹو سینس میں، نیگیٹو سینس۔ اب سابقہ وزیر اعظم، میں نواز شریف صاحب کی بات کروں گا، 3 بار وہ ملک کے وزیر اعظم رہے، اگر سوشل میڈیا پہ ان کی کوئی نیگیٹو بات کی جاتی ہے تو کیا اس سے پاکستان کا امیج بڑھتا ہے؟
نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو آپ کے پاس حقائق ہیں، آپ سچ بول رہے ہیں، آپ کسی پروپیگنڈے میں نہیں ہیں، آپ کسی انڈر انفلوئنس نہیں ہیں، تو آپ کو بات سچی کر رہے ہیں تو کر دیں۔ لیکن اگر آپ جھوٹے پروپیگنڈے میں ہیں، دنیا آپ ثابت ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے کئی بار ثابت ہو چکا ہے، آپ کا جج ارشد ملک آپ کے سامنے ہے، آپ کی ٹیپیں سامنے ہیں، آپ کی حرکتیں سامنے ہیں، لیکن آپ پھر اسی پروپیگنڈے کو اگر کر رہے ہیں تو یہ تو غلط ہے۔ اور میاں نواز شریف کی حقیقت، جو میاں نواز شریف ہمیشہ کہتے تھے کہ میں اپنے فیصلے اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اب دیکھیں براڈ شیٹ، انہوں نے سوچا کہ میاں نواز شریف کے اوپر ہم فائر کریں گے تو اس کا کیا رزلٹ ہوا؟ کہاں ہے آج براڈ شیٹ؟ براڈ شیٹ کے اندر ان کی اپنی حرکتیں سامنے آئی ہیں، یہ نیب کا کچا چھٹا کھل کے سامنے آ گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اس سے کمیشن کھاتے رہے ہیں میاں نواز شریف کا نام استعمال کر کے۔ میاں نواز شریف کو سامنے رکھا ہوا تھا عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ ہم نے ساسے پکڑنے ہیں میاں نواز شریف کے، آج آپ کا اربوں روپیہ دے دیا نا براڈ شیٹ کو، ان میں سے حصے تھے ان کے۔ تو یہ آسان ہدف ہوتے ہیں سیاستدان، جو آپ نے بات کی کہ نام لے دینے سے بدنامی ہوتی ہے، ان لوگوں کو اگر بدنامی کا خوف ہوتا، یہ جو آپ کی سو کالڈ اشرافیہ ہے یا سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو اگر پاکستان کی بدنامی کا خوف ہوتا تو یہ مارشل لا نہ لگاتے، یہ اپنے ہمسایہ ملکوں سے سیکھتے، جہاں جو ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا اور وہاں ایک دفعہ بھی مارشل لا نہیں لگا، انہوں نے نہیں سیکھا۔ آج ان کے علاقے ڈفرینٹ ہیں، ان کے اسکول الگ ہیں، ان کے کالجز الگ ہیں، ان کے پارکس الگ ہیں، ان کی یونیورسٹیز الگ ہیں، یہ سول بندے کو انسان نہیں سمجھتے، تو پھر آپ نے معاشرے کے اندر واضح تفریق کر دی ہے۔
راشد، ہم نے دیکھا کہ محترم میاں نواز شریف صاحب نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس دیے، جب پہلی دفعہ موٹر وے بنا تو جب یہ گاڑی چلا کر گزر رہے تھے تو اس وقت چکوال والی وہ کراس پہ، جو ابھی اس کا افتتاح نہیں ہوا تھا، تو غالباً یہ اپنی پوش گاڑی میں تھے، تو میں نے بھی دیکھا، تو میں بڑا خوش ہوا، یار اتنی خوبصورت، چونکہ میں خود یورپ میں رہتا ہوں، موٹر ویز پہ بہت سفر کرتا ہوں، تو میرا دل بڑا خوش ہوا، یار یہ موٹر وے۔ میں واپس آیا تو میں اپنے گاؤں گیا شہر سے، تو میں نے ایک آدمی سے بات کی، میں نے کہا یار بڑی خوبصورت موٹر وے بن رہی ہے، آنے والے دنوں میں آپ دیکھنا کہ کتنا ملک یہ ترقی کرے گا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ راجہ صاحب بات کر رہے ہیں، ہماری پینشن نہیں بڑھ رہی۔ تو میں نے کہا آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے؟ کہتے میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے کبھی گاڑی چلائی ہے؟ کہتے میں لائسنس ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے موٹر وے دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے موٹر وے دیکھی نہیں۔ انہیں اپنی پینشن بڑھانے سے آگے ان کی سوچ نہیں تھی۔ جب ہماری عوام کا راشد یہ حال ہے تو ہمیں بہت ساری چیزوں میں الجھا دیا جائے تو یہ پھر کسی کا قصور نہیں ہے۔
یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں ہماری عوام بھی مردہ الزام ٹھہرائے، اس کو آپ کلین نہیں کر سکتے۔ پاکستانی عوام کو کچھ سوچنا چاہیے کہ ان کو جو پروپیگنڈا بیچا جاتا ہے سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ اس کو بائے کر لیتے ہیں۔ وہ ان کو پتا ہے کہ یہ اے آر وائی یہاں بیٹھا ہوا اوورسیز پاکستان اس کی برین واشنگ کر رہا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جب میاں نواز شریف کے دور میں صرف 50 پیسے تیل کی قیمت بڑھی تو انہوں نے کہا جی عوام مر گئی، عوام پس گئی، یہ اے آر وائی کہہ رہا تھا، بریکنگ نیوز، عوام دب گئی 50 پیسے کے نیچے۔ آج جب 3 روپے اس کی قیمت بڑھی تو خبر کیا چلتی ہے جی 13 روپے بڑھانے لگے تھے، لیکن عمران خان نے کہا نہیں 13 نہیں بڑھانی، میں یہ غریب کا بڑا خیال ہے، صرف 3 روپے بڑھا دو۔ تو یہ خبر دینے کا آپ کا کہہ لو جرنلزم ہو، زرد صحافت یا پیک پہ ہو، تو میرا خیال ہے پاکستانی عوام کا یہ فرض بنتا ہے وہ اپنی آنکھیں، کان، ناک، گلا، کان سب کھول کے بیٹھے کہ کون ہمیں، کہ ہم کو بھیڑ بکری ہیں، ہم کو بھینسے گائے ہیں، کہ جدھر سے ہمیں کوئی ہانکے گا ہم ادھر کو چل پڑیں گے۔ ہم ماشاءاللہ باشعور پر، یہ پاکستان کی عوام کوئی بیوقوف عوام تو نہیں ہے، نہ اسے ہونا چاہیے کہ ہر آنے والے پہ آپ لڈو بانٹ دیں، ہر جانے والے پہ آپ جو ہے وہ تسبیحاں کرنی شروع کر دیں۔ ایسے نہ کریں، اپنے عقل کے پردے کو روشن کریں، دیکھیں کہ آپ کے ملک کو 73 سالوں میں کس شخص نے سنوارا ہے، किस शख्स ने बनाया है, आप उसकी कदर अगर नहीं करेंगे, आप मनफी प्रोपेगेंडे के अंदर बह जाएंगे, आप ARY जैसे चैनल जो दो दो कमरों के चैनल हैं उनकी बातों को सुन के हकीकत मान लेंगे और 3 बार के वजीर आजम को आप डिफेम करने की कोशिश करेंगे तो फिर मुल्क के हाल इस तरह हुआ करते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान का हो रहा है।
राशिद, मैं देख रहा था कि परवेज खटक साहब का बयान आया और आपने उस पर लिखा कि तड़ी लगा दी, बड़ा अच्छा आपने लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया है, तो परवेज खटक साहब को क्यों इतना ज़्यादा जो है उन्होंने एनर्जी आ गई है, उन्होंने कौन सा डब्बा पिया है?
परवेज खटक साहब जो हैं वो बेसिकली वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं और जहां से उनको इशारे आते हैं, जहां किसी का स्क्रू जो है वो टाइट करना होता है वो अपने मोहरे इस्तेमाल करते हैं, वो फलां जगह से उसकी डोरी हलवाते हैं। तो परवेज जो खटक ने ये बात की है ये बिना किसी सियाको सबाक के नहीं है, जब आप इनके मिट्ठू को छेड़ेंगे तो वो आपके फिर खटक के जरिए बातें करवाएंगे। ये दो कैंप काम कर रहे हैं इस वक्त। और जो परवेज खटक की बात है, खुद से वो बंदा तो कोई बात करने के काबिल आपको पता है नहीं, उसकी इतनी बेचारे की पसली नहीं है, तो उसको ये बात कहलवाई गई है ताकि इमरान खान के जरा होश के नाखून ले इमरान खान, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत तो बैसाखियों पे खड़ी है, एक बैसाखी भी इधर से उधर हुई तो इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। बाकी पता नहीं ये कौन सा नशा करते हैं, क्या पीते हैं, क्या इनको बनी गला से मिलता है, इसका जवाब रेहम खान साहबा मेरे साथ कई दफा इंटरव्यू में दे चुकी है और मेरा ख्याल है वो अब कोई पोशीदा बात नहीं।
राशिद, बहुत सारी फंड रेजिंग होती है यहाँ डेनमार्क में भी, मेरी आंखों से ये सारी चीज़ें मेरे सामने रहती है, क्योंकि मैं यहाँ लोकल रहता हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें आम लोगों से ज़्यादा बेहतर पता होती हैं। जब भी कोई मेहमान आता है यहाँ, जो कुछ भी होता है, बहुत सारी फंडिंग्स होती हैं, बहुत सारे जो हैं वो पैसे इकट्ठे होकर जो है वो मुख्तलिफ़ शक्लों में जाते हैं लोग, तो मैं ओवरसीज़ की बात करूँगा, मैं ओवरसीज़ की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मुझे ओवरसीज़ से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, डेफिनेट मुझे उससे, मेरी जान भी उसके लिए हाजिर है, हमारे सियासतदान हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं चूँकि हमारे पाकिस्तानी सियासतदान हैं। राशिद, काम जो है वो वक्त पर किया जाता है, जब वक्त गुजर जाए तो उसके बाद उस दवाई का असर नहीं होता, आप क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल ठीक बात है, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जो जो चोट जो है वो गर्म लोहा है उस पर लगनी चाहिए, बाद में आप ठंडे पे जो मर्जी करते रहें। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं हमसे गफलत हुई, हमने एक तो आप सबसे बड़ी बात आपकी बात से मैं सेकंड करूंगा कि मुताले की कमी ने हमें जो है वो आज इस नहज पे पहुंचाया है। हमारी जो जनरेशन मुशरफ दौर में पैदा हुई, जिस 99 के बाद वो जो लोग आज 21-22 साल के हैं, उन्होंने मुताले ही नहीं किया। मुशरफ उनको 10 साल एक मंजन बेचता रहा, उन्होंने मंजन पाए करते रहे, जो भी मंजन उनको मिला कि नवाज शरीफ ये है नवाज शरीफ वो है, उन लोगों ने इतना अकल के अंधों ने अपनी दिमाग को इस्तेमाल नहीं किया कि आप रिसर्च तो करें कि इस मुल्क में अगर जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट लगे हैं उनका खालिक कौन है। अगर आज मैं आपसे बात लंबी लिस्ट है मैं आपको सुना दूं, आप कहेंगे यार कि वाकई मियां नवाज शरीफ के अलावा आप गिनवा दें कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो सवाए इक्का दुक्का के, बाकी अगर 95% प्रोजेक्ट सब गिनेंगे तो एंड में आपको मियां नवाज शरीफ साहब की तख्ती जो है वो लगी नजर आएगी। तो ये तख्तियां उखाड़ते रहे, तख्तियां अपनी लगाते रहे, इससे मुल्क तरक्की नहीं करता। मुल्क तरक्की करता है प्रोजेक्ट से, मेगा प्रोजेक्ट से, और ये जो पायलट प्रोजेक्ट्स लगाते हैं छोटे छोटे, ये जो मौजूदा हुकूमत करती है पायलट प्रोजेक्ट छोटे छोटे एक शहर में आधे शहर में पौने शहर में, वो सिर्फ माल बनाऊ प्रोग्राम होता है, और वो माल बनाते हैं जाली एक सेटअप लगाते हैं, वजीर आजम को बुला के इनॉग्रेशन करवाते हैं, उसके बाद सब तितर बितर हो जाते हैं माल जेब में सब हजम। तो इससे मुल्क तरक्की नहीं करते, मुल्क हमेशा मेगा प्रोजेक्ट से तरक्की करते।
राशिद, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जब बने नहीं थे तो वो अपनी तकरीर करते थे तो वो हमेशा कहते थे, सबका वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब पर तनकीद करते थे तो वो कंटेनर के ऊपर खड़े होकर फरमाते थे कि मियाँ साहब उन साड़ी वारी आन दो, आप इसको किस तरह लेंगे।
तो आ गई ना बारी भाई, जो जिन्होंने बारी दिलवाई वो मियाँ साहब को नहीं कहते थे, वो अपने बड़ों को कहते थे कि जी साड़ी वारी आन दो, तो उन्होंने दे दी बारी। वो एक ना अहल ना लायक ना तजर्बाकार ना समझ बंदे को सौगात को, जिस मियां साहब फरमाते हैं सौगात, उसको लाके 22 करोड़ वान के सर पे बिठा दिया ना, बारी आ गई। उस बारी में आपने किया क्या? उस बारी में आपने 5.8 की GDP को लाके मनफी में खड़ा कर दिया, ये आपने किया, ये इस बारी का इंतजार था। वो बारी बेसिकली पाकिस्तान की अवाम, गरीब अवाम, 22 करोड़ अवाम की तबाही की बारी थी, वो पाकिस्तान की अवाम के मुंह से रोटी का निवाला छीनने की बारी थी, वो पाकिस्तान की अवाम को गुर्बत और महंगाई की चक्की में पीसने की बारी थी। वो बारी आ गई और वो बारी अपनी बारी पे पीस रहे हैं पाकिस्तान के अवाम, तो ये भुगतेंगे जी, जो लाए हैं वो भुगतेंगे और वो भुगत रहे हैं, अब वो तरले मिनते पर आए हुए हैं।
आपने एक वीडियो क्लिप लगाया जो सिंध के गवर्नर साहब हैं, आपने लिखा उनका झूठ पकड़ा गया, इसकी जरा वजाहत करें।
जी वो क्लिप कुछ इस तरह था, वो गवर्नर सिंध है इमरान इस्माइल, वो किसी तकरीब में फरमा रहे हैं कि मैंने पिछले साल भी 5 लाख टैक्स दिया और इस साल भी 5 लाख टैक्स दिया। आपको पता है झूठों की जमात है, PTI इज इक्वल टू झूठ लीग, दैट्स इट। पीटीआई को अगर कोई सच्चा समझता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो बादशाह या अजीज शाह आदमी होगा। तो अब तो ओवरसीज पाकिस्तानी भी काफी हद तक समझ गए इस बात को कि प्रॉपर झूठों की जमात है, जिनके कुत्ते जो है ये कहते थे हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे। इसी मसरूफ की जिसने आपने बात की, इमरान इसमाइल, उसके कुत्ता भी प्रोटोकॉल में घूम रहा है। अब इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं, वो सामने नजर आ रहा है, सारी कौम ने देखा, वीडियो वायरल हुए। अब वही शख्स वो कहता मेरी फैमिली थी, उसने पता नहीं किस चीज का नाम फैमिली रखा हुआ है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वही शख्स कह रहा है मैं 5 लाख टैक्स देता हूँ। उसी स्टेज के ऊपर मौजूद थे मुर्तजा वहाब साहब, आपको पता है सिंध में, तो अब उनसे आप कैसे छुपाएंगे, वो तो गवर्नमेंट में है वहाँ। तो उन्होंने आके कहा भाई तुमने 1,83,000 रुपया टैक्स दिया, तुम क्या कह रहे हो मेरे 5 लाख टैक्स से, झूठ बोल रहे हो। उसके मुंह पे उसका झूठ पकड़ लिया और उसकी हिम्मत ही उसको डिनाई कर देगी, उसका रिपटल देने की। तो ये इनकी औकात है, वो क्लिप इस मुतल्लिक था।
राशिद, मैं मियां साहब की बात करूंगा, मैं इसलिए छोटे छोटे सवाल कर रहा हूँ, तेजी से मैं ज्यादा सवाल कर लूँ आपसे। राशिद, जब मैंने सर्वे किया, मैंने कहा यार ये मुस्लिम लीग नून है, ये मियां साहब की जमात है, रिलेटेड है, बहुत सारे मीडिया पर शहबाज शरीफ साहब का भी जिक्र किया जाता है कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे तलुकात हैं, कभी नैप ने पकड़ लिया, वो उधर गए, बहुत सारे जो मीडिया की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने खुद लोगों से पर्सनली जब बातें की तो हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून में बहुत ज़्यादा लीडर हैं, बहुत अच्छी, जिस तरह जनरल ज़िया के ज़माने में जो है उनके जो स्पीकर थे, स्पोक्समैन थे, बड़े अच्छे अच्छे लोग थे, भुट्टो साहब के दौर में बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग थे, बड़े विजनरी लोग थे। अब लोग नून को सिर्फ मियां नवाज शरीफ समझते हैं, नून के लोग मानने के लिए किसी और को तैयार नहीं, आप फिर आगे पार्टी कैसे चलेगी?
आपका सवाल मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, आप क्या कह रहे हैं कि नून में अब लीडर नहीं रहे?
बहुत ज़्यादा लीडर हैं, लेकिन जो वर्कर है वो किसी को मानता नहीं है, वो कहता है कि सिर्फ मुस्लिम लीग हमारा लीडर है, वो नवाज शरीफ है।
नहीं, लीडर तो एक ही होता है ना, आप क्या चाहते हैं कि हर एक को लीडर मान ले, ऐसे तो नहीं होता ना। अब लीडर तो मियां नवाज शरीफ साहब, आपको पता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और मियां नवाज शरीफ के होते हुए हम किसी और को लीडर तो नहीं कह सकते। लीडर तो मियां नवाज शरीफ है, राहबर तो एक ही होता है, लीडर तो एक ही होता है, कायद तो एक ही होता है। अब वो मुकामी लीडर होते हैं, इलाकाई लीडर होते हैं, सूबाई लीडर होते हैं, वो भी लीडर है, वो बाइस इज्जत है, बाइस एहतराम है, बाइस तकरीम है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वो वाहिद जमात है, आपको पता है कि यहाँ नून लीग का जो वर्कर है, आप देख रहे होंगे वो अब वाजे फर्क नजर आ रहा है पीटीआई के वर्कर में और नून लीग के वर्कर में। नून लीग का वर्कर तो इज्जत करता है अपने, अब यहाँ पे क्या होता है, आपने पिछले दिनों वायरल वीडियो देखी होगी, वो इसहाक डार साहब के साथ बदतमीजी करती हुई खातून, तो
जी बिल्कुल मैंने आपको भी देखा है, इसहाक डार साहब बड़ा मतलब है कि जवाब दे रहे थे वो खातून, तो मैंने शक्ल उनकी नहीं देखी लेकिन वो बातें कर रही थी।
हाँ जी, वो खातून एम्बेसीज की पेरोल पे, एजेंसीज की,
ये जरा तफसील हमारे सामान को तफसील जरा खुल के बता दे।
जी वो यहाँ है, खातून आती थी और क्योंकि हम ऑफिस में होते थे मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, तो वो उनको पैसे दे के, ये एम्बेसी जो लंदन में एम्बेसी है और उसके जो परवरदा लोग हैं, उनके जो आका हैं, वो उनको उस औरत को पैसे दे के उस औरत को भी और लोगों को भी भेजते हैं वो एम्बेसी वाले, कि जी आप जाके हमें इन्फॉर्मेशन दें कौन कौन ऑफिस में आ रहा है, कौन कौन जा रहा है, और कोई वीडियो बनाए। तो वो खातून आती थी, कभी वो आबिद शेर अली साहब की वीडियो बना रही है, कभी किसी की बना रही है, वो खातून है, पाकिस्तानी खातून है, नकाब किया हुआ है, तो उसको बंदा क्या कहे, लेकिन जितना उसको जलील कर दिया मेरा ख्याल है वो काफी था। और उसके बाद भी कुछ 2-3 वीडियोस में है, कभी भी अगर उसने वो वीडियो रिलीज की तो उसको पता चले जाएगा कि आपके घर में मर्द नहीं रहे कि आप लोगों के मर्दों की वीडियो बनाती फिर रही है। तो ये बेसिकली वो माइंड सेट है जो इमरान खान ने, जो आपने कहा ना कि इज्जत नहीं है, तो वो इसने एक फैन क्लब बनाया है जिसका सिर्फ टारगेट है कि आपने जमहूरी लीडरों पे करप्ट करप्ट चोर चोर गद्दार गद्दार का इल्जाम लगाने हैं और वीडियो बनानी है बदतमीजी। आप देखिए पूरी एक नस्ल, इमरान खान के बाकी सारे गुनाह छोटे हैं सर, इमरान खान का जो ये गुनाह है कि इसने पूरी नस्ल को तबाह कर दिया है, वो गुनाह इसे तारीख कभी माफ नहीं करेगी। हम होंगे या नहीं होंगे, तारीख में लोग पढ़ेंगे आके कि इस इमरान खान का सबसे बड़ा जुर्म था कि इसने एक पूरी नौजवान नस्ल का माइंडसेट खराब किया, पूरी नौजवान नस्ल को तबाह किया, गाली गलोच पे लगाया। आज आपकी नस्ल कहाँ खड़ी है, ना उसे तमीज है, ना उसे बोलने की तमीज है इसके फैन फॉलोअर को। तो ये सूरत हाल है। बाकी बात रही लीडर की, लीडर तो पार्टी में या किसी भी जगह पे एक ही होता है, कायद, हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं और हम उनको फॉलो करते हैं, उनकी तकलीद करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो पार्टी पॉलिसी है उसको फॉलो करते हैं। जी
राशिद, मैं आपसे ये सवाल करूंगा, लोग अक्सर हमें कहते हैं निजी महफिलों में कहते हैं कि यार जब ये पार्टियां इक्तदार में आती हैं तो अपने वर्कर का, मैं मिसाल दूंगा, मैं यूरोपियन ममालिक की मिसाल दूंगा कि यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता, उस वक्त ये बेयारो मददगार घूम रहे होते हैं, लीडर होते हैं जो थोड़े करीब होते हैं, उनकी जान पहचान होती है, आम जो लॉयल वर्कर होता है उनको कोई पूछता नहीं, तो क्या ये चीज़ें मियां साहब के नॉलेज में हैं?
जी आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन किसी हद तक आपने देखा पिछली जो गवर्नमेंट आई पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की, उसमें अगर आप बरतानिया की मैं बात करूं, बरतानिया के अंदर ओवरसीज कमीशन बनाए गए, यहाँ लोगों के मसाइल हल हुए। यहाँ पे अमजद मलिक साहब थे, जुबैर गुल साहब थे, लोगों के मसाइल हल हुए, लोगों को जो जमीनों पर कब्जे थे वो उनके ऊपर बाकायदा जो है वो छुड़वाए गए, और बाकी मामला बड़े थे। मुझे, मैं खुद पर्सनली जानता हूँ लोगों को जो बड़े, लेकिन आपकी ये बात से भी मैं एग्री करता हूँ कि कुछ रसाई की जो थी वो कमी है। आप लेकिन इस दफा देखेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, तो आप एक वाजे फर्क देखेंगे इंशाल्लाह। ओवरसीज पाकिस्तानी इसके लिए पूरी पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तैयार कर रही है, जिसके तहत हम अब पूरे पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी अक्सरियत में बसते हैं वहां के लिए एक प्लान है, एक पॉलिसी है, जिसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गौरव होश फरमा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बड़ा जबरदस्त किस्म का पैकेज जो है वो आएगा।
राशिद, आपने ऑफ द रिकॉर्ड सुना, साफियों से भी सुना, तो वो अक्सर कहते हैं यार ये मरियम लेगी, इसका क्या मतलब है?
नहीं जी, अब मैं इस
मैं
पे
लेगी
क्या
से मतलब
कमेंट
मैं
करूं।
सियासत की बात करूंगा कि एकदम मरियम आई और एकदम छा गई और इतना बड़ा लीडर, उतना कद काठ, इतना जल्दी बढ़ गया।
जी बिल्कुल ठीक बात है। सर देखें, कोई भी चीज होती है वो बिना बिना मेहनत के, बिना कुर्बानी के, आप फिर मैं वही कोट करूंगा वाकया मिट्ठू और तीतर वाला, आप देखें कि वो अच्छे भले मर्द लोग एक दिन प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, नहीं कर सके ना। आपने देखा, सारी कौम ने देखा, उन्होंने अपने वीडियो पैगाम जारी किया, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी डैमेज कर ली कि हमारी कम अकली थी, हमारे पास रिपोर्ट नहीं थी, हमारे पास तफ्तीश नहीं थी, तहकीक नहीं थी, लेकिन वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्होंने माफिया मांग ली। अब आप देखें, एक निहत्ती लड़की जिसका नाम मरियम नवाज है, वो खड़ी है, वो नाम ले रही है, वो स्टैब्लिशमेंट के उन आयन शिकन करदारों का नाम ले रही है, वो चौकों चौराहों में जलसे कर रही है, और सुबह 4-4 बजे सरगोधा, फैसलाबाद, खुशाब, डीजी खान, मंडी बाउद्दीन जाके चौकों चौराहों में लोगों के साथ फजर के वक्त खिताब कर रही है, वो दो दो दिन फासलों में है, सफर में है। तो मुझे आप बताएं, कोई भी चीज बगैर मेहनत के नहीं मिलती, वो औरत, वो खातून, वो हमारी बहन बाजी, वो जो है वो दिन रात मेहनत कर रही है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते वो मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी है, आप जरा उसकी कुर्बानियां भी देखें। आप गिलगित बल्तिस्तान में जो 10-12 दिन की एक थका देने वाली जो थी कैंपेन, उसने लीड की है, अब भी देखें हर जलसे में जहां भी कोई पार्टी का इवेंट है वहां मरियम नवाज पहुंचती है, मरियम नवाज हर उस जगह पहुंचती है जहां मजलूम की आवाज बुलंद बनना होता है, मरियम नवाज कोयटा जाती है, मरियम नवाज बलोच तलबा के मसाइल हल करती है, उनकी फीस के मसाइल हल करती है। तो भी देखें, जब आप कुछ कर रहे होंगे, हरकत में बरकत है, आवाम देख रही है, आवाम फिर पसंद करती है। और मरियम नवाज ये कहने में, मुझे कहने दें कि मरियम नवाज इस वक्त तस्वीरें कायद है, तस्वीर अक्से कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, और लोग उन्हें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो है वो शक्ल में देखते हैं।
क्या मियाँ साहब जुल्फकार अली मरहूम, सर जुल्फकार मरहूम भुट्टो की बेनजीर की तरह तैयार कर रहे हैं?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, तैयारी ऐसा नहीं होती, तैयारी ये देखिए आपके
नहीं,
सियासतदान की
डेफिनेट बच्चों वाले होते हैं, हर बच्चे के साथ माँ बाप को तो बच्चे सारे प्यारे होते हैं, कुछ बच्चे ज्यादा प्यारे होते हैं।
मरियम ने अपनी जगह खुद बनाई है जी, मरियम नवाज ने अपनी जगह खुद बनाई है। मियां नवाज, मुझे किसी एक जगह बता दें जहां मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको उठाया हो, वो दिलों में घर करती गई है मरियम नवाज, वो अपनी उनके अंदर, वो सोशल मीडिया की देखे, उन्होंने सोशल मीडिया की कैसी टीम खड़ी की है नून लीग की, पहले नहीं थी ये, इसका सारा क्रेडिट मरियम नवाज को जाता है। जब आप मेहनत करेंगे, जब आप बात करेंगे, जब आप लोगों के पास जाएंगे, तो लोग आपको लीडर बना देते हैं, आपको किसी को लीडर बनाने की जरूरत नहीं होती। तो मरियम नवाज ने साबित किया है जी कि वो लीडर है, वो मुस्तकबिल की लीडर है।
नसरुल्ला, आप ज़रूर मियाँ साहब को कहिएगा कि मुझे चूंकि मैसेज आ रहे हैं जो आपकी पार्टी के लोगों के आ रहे हैं कि मियाँ साहब जब यहाँ आखिरी बार यहाँ तशरीफ़ लाए, जब प्राइम मिनिस्टर थे डेनमार्क में तशरीफ़ लाए, मरहूमा जिंदा थी, उनकी मिसेज जोजा उनकी जिंदा थी, तो काफ़ी लोगों को उनको मौका, लोगों ने ज़बरदस्ती मियाँ साहब से मुलाकात की, जिनका वर्कर को सपोर्टर को बड़ा रेंज था कि अम्बेसी उनको मिलने नहीं दे रही, हम मियाँ साहब से मिलना चाहते हैं। बहरहाल बाद में वो सारे मिले, काफ़ी तको दो हुई। तो वर्कर का जो है जहाँ भी जाए, जो है पार्टी का लीडर जहाँ भी जाए, जिस मुल्क में भी जाए, या कोई वज़ीर आए या साबका वज़ीर आए या साबका कोई बड़ा लीडर आए, जिस मुल्क में भी जाए, तो अपनी जमात से वो राबता करे, अपनी जमात से वो पूछते नहीं हैं, दूसरी जमातों के लोग जिनको पैसे खर्च करते हैं, गाड़ियों में बिठाते हैं, लीडर उधर चले जाते हैं।
नहीं, ये जो आपने गाड़ियों उठाने वाली बात की, मियां नवाज शरीफ पे तो सादिक नहीं आती,
नहीं
लेकिन
नहीं मियाँ साहब की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी लीडरों की बात कर रहा हूँ।
हाँ जी बाकी, लेकिन ये है कि आपकी ये बात, मैं इस बात को इंशाल्लाह ताला कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब तक पहुंचाऊंगा भी, और वो इस पे खुद भी बड़ा ऑनर फील करते हैं कि मैं अपनी पार्टी के लोगों से मिलूं, और आपको पता है कि वो यहाँ पे पीछे लोग आते रहे ताजियत के लिए, माँ जी के जो है वो इंतकाल के बाद वो मियाँ साहब ने मुलाकातें उनसे की। और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर वक्त लाएगा तो जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब के मीटिंग्स भी होंगी, कन्वेंशन भी होंगे, इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा तो आप एक वाज़ह फर्क देखेंगे।
राशिद, ये जो काबिल लोग होते हैं, मैं इसहाक डार साहब की बात करूंगा, सियासी लोग हक पहुंचता पीटीआई का या किसी जमात का भी, सियासी इख्तलाफ से मैं कभी किसी से नाराज़ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। जितने भी काबिल लोग हैं वो अगर अपने मुल्कों में नहीं रहेंगे, अगर मैं अगर वजीर आजम होता तो मैं इसहाक डार साहब को बुला लेता, इनसे काम लेता।
नहीं, ये बात आपकी लम्हा फिक्रिया है। अब देखें इसहाक डार साहब पे कुछ भी केस नहीं है और इसहाक डार साहब के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मैं उनके साथ उनकी सोबत में उनकी शफकत में बैठता हूँ, उठता हूँ, देखता हूँ। आप यकीन जाने, आपके सामीन भी सुने, इस जैसा काबिल शख्स, इसहाक डार जैसे काबिल शख्स मैंने बहुत कम देखे। पाकिस्तान एक ब्लेस्ड कंट्री है कि उसको इसहाक डार जैसे जहन का बंदा मिला, लेकिन शायद हमसे कदर नहीं हो सकी, शायद हम उनकी उस तरह कदर नहीं कर सके जो बैरूनी दुनिया उनकी कदर करती है। लोग आज भी उनको कहते हैं जी आप, स्टेट लेवल के लोग कहते हैं जी आप हमारे मुल्क में मईशत को ठीक करने के लिए कोई हमें जो है नसीहत करें, एडवाइस करें, कोई बताएं कैसे करें। इसहाक डार साहब को लोग 74 से ये बातें कह रहे हैं कि जी आप हमें कुछ एडवाइस करें, तो लेकिन जब आप देखें पाकिस्तान की मईशत को वो शख्स कहाँ से कहाँ ले गया। ये कोई कोई ढकी छुपी बात नहीं, और नहलों के हाथ में आई तो ये माइनस में ले आए। तो इसहाक डार जैसे साहब जैसे लोग हैं वो सदियों में पैदा होते हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें अकल सलीम अता की है, और वो इंशाल्लाह ताला जब भी पाकिस्तान में अच्छे हालात आएंगे, जब भी जमहूरी बहाल होगी, इंशाल्लाह आप देखेंगे इसहाक डार साहब अपनी खिदमात अच्छी तरह पेश करेंगे।
राशिद, हम ओवरसीज़ हैं, हम यहाँ रहते हैं, अपने मुल्कों को छोड़कर यहाँ आए, यहाँ आबाद हो गए, बच्चे यहाँ का, हमारा बहुत सारे ओवरसीज़ के आप यूरोप में देखते हैं प्रॉब्लम्स होते हैं, लीडर आते हैं वो अपने हालात में मजबूरियाँ उनकी होती हैं, बाकी लोग भी आ जाते हैं, कोई हल तो होना चाहिए। अब जो सियासत है, आप इतनी बड़ी जमातें, 10 जमातें इकट्ठी हैं, मीडिया पे हर रोज़ हम सुनते हैं मेरे इख्तलाफ है, वो कहते हैं हमारे दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है। जब पाकिस्तान को इस तरह डी एस्टेब्लिश किया जाता है तो इसका नुकसान सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ को होता है, लोग इनको वापस बुलाना, मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे वापस जाएँ, अपने वतन में जाएँ, इतना खूबसूरत हमारा मुल्क है, लेकिन हम लोग खुद यहाँ आकर मजबूर हो गए, हम खुद वापस नहीं जा सकते, आप क्या कहेंगे?
देखे ये बदकिस्मती है, और इन्होंने 73 सालों में यही तो सब यही तो वो कर देखे। मैं फिर बार बार वही बात करूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट का क्या काम था मार्शल लॉ लगाने का, फौज का क्या काम था मार्शल लॉ लगाने का, आपका क्या हक पहुंचता है कि आप जमहूरी मकबूल तरीन लीडरान को जो है वो तंग करें, उनको इख्तदार से अलग कर दें। अब आप मियाँ नवाज शरीफ की बात करते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वोट की बेहुरमती का जवाब इनसे मांगे तो मुजरम है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 3 बार मार्शल लॉ लगाने का इनसे जवाब मांगे तो वो बागी है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इनसे आयन की धज्जियां बखेरने का जवाब मांगे तो वो गद्दार है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इनसे पाओं के नीचे पार्लियामेंट को रोंदने का जवाब मांगे तो वो मफनूर है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इनसे आजादी इजहार पर पाबंदी लगाने का जवाब मांगे तो वो जला वतन है। आप इनको मुजरम कहें, इनको बागी कह लें, गद्दार कहें, मफरूर कहें, इश्तियारी कहें, जला वतन करें, फांसियां लगाएं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके सामीन को बता दूं कि कभी ये मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के दिलों में से नहीं निकाल सकते। इनके ये झूठे खिताब, ये बागी, गद्दार, मफरूर, करप्ट, जिला वतन के खिताब, और मैं आपको ये भी एक बात बता दूं कि जब ये डिसक्रेडिट करते हैं सियासतदानों को, जब ये जमहूरियत को चलने नहीं देते, इनका सबसे पहला अटैक जमहूरियत पे होता है, इनका सबसे पहला अटैक सियासतदानों पे होता है, इसलिए कि जब ये लोग डिसक्रेडिट होंगे तो हमारी हमें आगे आने का मौका मिलेगा, एस्टेब्लिशमेंट को आगे आने का मौका मिलेगा। लोग कहेंगे कि सियासतदान तो थे ही चोर, ये लोग आए हैं तो आए रसगुल्ले बांटते हैं इनके आने पे, जब मार्शल लॉ लगता है तो फिर लोग मिठाइयां। ये है वो वजह कि पहले इनको डिसक्रेडिट करो, इन पे करप्शन करप्शन के इल्जाम लगाओ, दुनिया में रुसवा करो, इनको जला वतन करो, बदनाम करो, और उसके बाद अपना रास्ता हमवार करो। जब तक ये वाली नर्सरी बंद नहीं होगी ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, ये आज आप बात लिख लो।
राशिद, देखें ना, इस वक्त डिसक्रेडिट सियासतदान ही मियाँ साहब को जो बातें कर रहे हैं, सियासतदान कर रहे हैं, कल उस जगह वो भी आ सकते हैं, उन्हें यह नहीं पता कि एक बंदा 3 बार वजीर आजम रहा है, अगर आज मैं वजीर आजम हूँ तो उस वजीर आजम की बातें करूँ, कल उस जगह पर मैं भी आ सकता हूँ, तो इसका मतलब सियासतदान एक दूसरे के वैरी बन जाते हैं।
यही इमरान खान कल जब इसकी गवर्नमेंट को निकालेंगे, जब ये आज लाडला है कल लाडरा नहीं लेगा, यही इमरान खान कल इनको गालियां निकालेगा। आपने देखा कि यही इमरान खान इनको गालियां निकालता था, इसके 21 क्लिप मौजूद हैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिसमें ये फौज को गालियां निकाल रहा है, जिसमें ये एस्टेब्लिशमेंट को गालियां निकाल रहा है, जिसमें वो सबके सामने आपने देखे होंगे, वो वो 21 क्लिप्स इसके माथे पे कलंक का टीका है, जिसको ये पहले कहता था कि ये चाहे तो अपने कुत्ते को वजीर आजम बना दें। इसका मतलब ये मानता था कि हुकूमतें ऐसे बनती हैं और हुकूमतें ऐसे हटाई जाती हैं। यही इमरान खान होगा, जब ये कल आंख का तारा नहीं होगा, जब इसको निकाल के बाहर फेंकेंगे तो यही इमरान खान इन फौजियों को गालियां निकालेगा, यही इमरान खान इस एस्टेब्लिशमेंट को गालियां निकालेगा। तो फिर कहने की बात यही है कि अपने छोटे छोटे पेटी मुफादात के लिए, अपने छोटे छोटे हुकूमत को हासिल करने के लिए, फलां को बदनाम करके खुद इक्तदार पे बैठने के लिए, आपको भी कल को जुड़ी आप ये आप समझ रहे पाकिस्तान में कोई सिविल गवर्नमेंट चल रही है, पाकिस्तान में कोई जमहूरियत है? जी नहीं हजूर, पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। आप मुझे बात करके दिखाएं पाकिस्तान में, आप मुझे कहीं से अपनी अपनी कोई नुक्ता नजर पेश करके दिखाएं पाकिस्तान में, आप नहीं कर सकते। तो ये बात जब इमरान खान के उस भी छितर पड़ेंगे तो वो भी समझ जाएगा कि यार ये बात ठीक कर रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब, लेकिन देर हो जाती है, तब तक बहुत देर हो जाती है। मुल्क आपका 10 साल आगे जाने के बजाय 10 साल पीछे आ चुका होता है, फिर उसको आप आगे लेके जाते हैं, फिर वो 10 साल बाद पीछे आ जाता है। तो इस तरह तो मुल्क नहीं बना करते, ना उनकी किस्मत संवरा करती है। आपको एक मेंटेन रखना पड़ता है, जो आप देखा पिछले 5 साल में पाकिस्तान गुर्बत के अंधेरे मिट रहे थे, आप देखिए कि पाकिस्तान अंधेरों से उजालों में आ रहा था, 12,000 मेगावाट सिस्टम में बिजली आ रही थी, आप देखिए 5.8 पे जीडीपी चली गई थी, आप देखिए कि 6% लोग जो खतरे गुर्बत से निकल गए थे, आप देखिए कि मोटरवेज और शाहराहों के जाल बिछ रहे थे। तो फिर आप देखें कि जब अगर ये चीज 5 साल और चलती, जो कि हक बनता था मियां नवाज शरीफ का अगली गवर्नमेंट मिलने का, तो ये आज पाकिस्तान 5.8 से 7.9 तक चला जाता, लेकिन वो मनफी में चला गया। तो बदकिस्मती है हमारी भी और 22 करोड़ वाम।
राशिद आक, मैं एक तारीखी एक दो बातें करने लगा हूँ कि मियां साहब जब पहली दफा एग्जाइल में आए सऊदी अरेबिया, अटक से निकले तो जब आए तो मैं उन दिनों में उमरा करने गया हुआ था सऊदी अरेबिया, जिस होटल में वो ठहरे थे उसी होटल में मैं ठहरा हुआ था, मुझे ये नहीं पता था कि मियाँ साहब इस होटल में ठहरे हुए हैं। तो उस दिन ईद वाला दिन था, तो जब मैं नीचे खड़ा था, उस दुकान थी सुनियारे की दुकान थी, तुर्की के सदर होते थे अर्दोगान, वो भी वहाँ ठहरे हुए थे, तो मेरी सबसे मुलाकात हुई, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मियाँ साहब किसी को पहचान भी नहीं रहे, इतने कमज़ोर थे कि मैं आपको बता नहीं सकता कि शायद आपको उस वक्त का पता है या नहीं पता, मुझे बड़ा शौक लगा। मेरी असन से मुलाकात हुई तो मैं ये वाक़ा आने रहा इसलिए बयान करूं, असन मुझे कहने लगे कि मैंने उनको बताया मैं कौन, मुझे कहने लगे कि आप आ जाएं वहाँ छतरियों के नीचे हम बैठे होंगे, वहाँ आपसे हमारी बातचीत होगी। तो मैंने देखा लोगों को पता ही नहीं था कि मियाँ साहब जो हैं, या दूसरे दिन लोगों को पता चला कि मियाँ नवाज शरीफ, फिर लोग नमाज में अपना टाइम निकाल कर उनको देखने के लिए आते थे, 3-4 मर्सिडीज़ का वो एक काफ़िला होता था उस पर वो वहाँ लेके जाते थे। उसके बाद मियाँ साहब जो है वो पहली दफ़ा जब इंग्लैंड आए, इंग्लैंड से बाहर जब निकले तो नॉर्वे तशरीफ़ लाए, वहाँ हमारी इनसे मुलाकात हुई। बहुत सारी ऐसी जो मेरे पास हिस्ट्री वाइज तस्वीर हैं वो मेरे पास आज भी कुछ मेरी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। मियाँ साहब ने वो दौर भी देखा, उसके बाद मियाँ साहब दोबारा वज़ीर आज़म भी बन गए, उसके बाद दोबारा उनकी जो है वो सारा हिसाब किताब चलता रहा। राशिद, कौम को कौन सच बताएगा, मेरा आपसे सवाल है।
कौम को खुद ये सारी चीज़ें भी देखनी चाहिए कि देखे के 99 में एक अच्छी भली चलती हुकूमत को घर भेजा गया, कौन मुजरम है, कौन मुजरम है? ये मियां नवाज
ये आप वाला सवाल एक मैंने बहुत ही जिम्मेदार आदमी से किया, अलीहदगी में मेरी मुलाकात थी, अचानक मेरी मुलाकात थी, तो मैंने उनको कहा जी कि आप ये काम क्यों हुआ, क्यों होता, तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप बताएं, आप ज़रा थोड़े से ज़्यादा जो है चूँकि यूरोप में रहते हैं आप बहुत खुल के बात कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि ये, मैं आपसे वही लफ्ज़ कोट कर रहा हूँ कि मियाँ साहब फिर जर्नैलों को लगाते क्यों थे, जिसका हक था उसको नहीं दिया, फिर जूनियर्स को क्यों लगाया मियाँ साहब ने, ये उन बंदों ने, वो उन्हीं जिम्मेदार बंदों ने मुझे कहा।
देखिए मेरी बात सुने, ये भी एक बड़ा लम्हा फिक्री है कि हर बात को पाकिस्तान में एक तो और बड़ा शौक हो गया हर बंदे को, हर बंदा चाहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। मैं जो देखे, जहां से एक प्राइम मिनिस्टर चीज देख रहा होता है वहां से दूसरा बंदा नहीं देख रहा होता। होता क्या है, कुछ चीजें हमें नहीं मालूम होती। वो एक 3 दफा का वजीर आजम है, वो अब अक्सर मियाँ साहब के साथ बैठे होते हैं, जहां से मियाँ साहब जिस एंगल से बात कर रहे होते हैं आप उस एंगल से बात नहीं कर सकते, मैं उस एंगल से बात नहीं कर सकता, हम अपने इलम के मुताबिक बात करेंगे। मियाँ साहब ने प्रैक्टिकल चीजें देखी हुई है, वो एक एक बंदे को देखते हैं, वो जानते हैं, परखते हैं। अब किसी के दिल का हाल तो कोई नहीं जानता, ये सिर्फ एक बंदे का काम नहीं होता, ये अदारा का इसमें रिएक्ट करता है। जबकि मार्शल लॉ लगता है, कोई एक बंदा तो नहीं आके कह देता अच्छा जी मैंने मार्शल लॉ लगा दिया, ये बकायदा पहले से प्लान होता है। इसके 99 के केस में भी प्लान था, 3-4 जर्नैल मिले हुए थे, आप सबको पता है, उस पर किताबें भी लिखी जा चुकी है। लेकिन होता क्या, आपने किसी ना किसी सूटेबल बंदे, आप प्राइम मिनिस्टर है, आप कोई गलत बंदा भाई सोच तो नहीं लगाते कि मैं इस गलत बंदे को लगा दूं और कल को मेरा तख्ता उल्ट दे, आप तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लगाते हैं। ठीक है, अगर कोई जूनियर बंदा आपको बेस्ट लग रहा है आप वो लगा दें, आपकी डिस्क्रिप्शन में आप लगा सकते हैं। आपको लगता है यार ये सीनियर बंदा शायद इतना एफिशिएंट नहीं है जितना ये जूनियर है, तो आप लगा दें, लेकिन आप दिलों के हाल तो नहीं जानते कि वो आगे कल को क्या करेगा। ये मसला नहीं है क्योंकि जिसमें प्राइम मिनिस्टर का एक इख्तियार है, स्वाबदीदी इख्तियार है, वो किसको किस ओहदे पे लगाए। हम चाहते क्या है, अब कभी हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशियल एक्टिविज्म कर लेती है, कभी जज कर लेते हैं, कभी मार्शल आ जाते हैं, तो जब आप अपनी आईनी हदूद से बाहर निकलते हैं मसला वहां पे खराब होता है। ये सूरत है जहां से मियां नवाज शरीफ सब चीजों को देखते हैं वो हम नहीं देख पाते, और जितनी कुर्बानियां उस शख्स ने दी हैं, आप चले पीछे ना जाए, आप 99 से शुरू हो जाए, 22 साल हो गए उसकी तरह कुर्बानियां आप गिनते जाए। वो शख्स तो अपने मुंह से बताना पसंद नहीं करता अपनी कुर्बानी को, उनसे जिक्र करते हैं कि मियां समझो, वो कहते हैं कि नहीं यार अल्लाह ताला खुद फैसला करेंगे, फलां बात का अल्लाह ताला खुद फैसला करेंगे, और फिर अल्लाह ताला फैसले करते भी हैं, वो कौम देख रही है। क्यों मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत को आप दिलों से नहीं निकाल सके, कुछ तो वजह है ना, कोई अल्लाह ताला का खास फजलो करम है कि मुशर्रफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको जिलो रसवा करने की, लेकिन आज भी वो शख्स अपने पूरे कद से खड़ा है और इंशाल्लाह ताला खड़ा रहेगा, और आप देखेंगे वो मियां नवाज शरीफ साहब एक दफा फिर पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे।
राशिद, हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ बोलने की कहने की बिल्कुल आज़ादी है, आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सुना जा रहा है, आपके पास टाइम है, जो कुछ आप कहना चाहते हैं आप कह लें।
जी मैं आखिर में बस आपके प्रोग्राम के तवज्जो से यही बात कहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब का कसूर क्या है। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तानियों की बात समझनी चाहिए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब गुजरांवाला के जलसे में अपने लोगों के दरमियान बैठ के अपने लोगों से जलसे में जवाब मांग रहा है, इन लोगों से कि इन तीन दो तीन आयन शिकल लोगों से जवाब मांग रहा है कि क्यों आप एक नाअहल सौगात को ला के 22 करोड़ अवाम के सरों पे आपने मुसल्लत किया। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आपसे जवाब मांगता रहा आपका नाम लेके, आपने जवाब नहीं दिया, आपने कहा जी नाम क्यों लेते हो हमारे, नाम क्यों लेते हो। आज जब बैरूनी अदारे आपको जवाब दे रहे हैं वही जवाब बदनामी की सूरत में, तो आपको कबूल है। आज आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जवाब दे रही है कि करप्शन ज्यादा हो गई, वो कबूल है। आज आपको रोजवेल्ट होटल जब्त हो रहा है वो जवाब दे रहा है, आपको कबूल है। मलेशिया में आपके जहाज पकड़े जा रहे हैं वो कबूल है। वर्ल्ड बैंक आपको जवाब दे रहा है वो कबूल है। IMF आपको बदनामी की सूरत में जवाब दे रहा है वो कबूल है। एम्बेसीज में आपके असासे अरबों रुपए के जब्त हो रहे हैं वो कबूल है। रेकोडिक में आपके असासे जब्त हो रहे हैं वो कबूल है। लेकिन जब तीन दफा का वजीर आजम आपसे जवाब मांग रहा था कि हजूर अपने घर को इन ऑर्डर करें, अपने घर पे अपनी सफों में इतिहाद पैदा करें, ये बार बार के मार्शल को छोड़ दें, आप बच्चों की तरह मुंह पे हाथ फेर के इंतकाम की आग में जलते थे, और ये शख्स कहता था कि मुल्क से गरीब का रोजगार छीन लिया इस शख्स ने, इसने मुंह से नवाला छीन लिया है, सर से छत छीन लिया, और आज कह रहा है घबराना नहीं है। आप इस किस्म की सौगात ले आए हैं फिर आपको भुगतनी तो पड़ेगी हजूर। मियां नवाज शरीफ आपकी गलतियों की निशानदेही कर रहे थे, मियां नवाज शरीफ आपको वक्त से पहले बता रहे थे कि अपने रास्ते ठीक कर लेंगे, आप इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं मानी, और आज आप देखें पूरी दुनिया में हमारी जगनसाई हो रही है।
राशिद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे सामान के साथ शेयर किया। ये हमने गपशप की शक्ल में आपका चूंकि पहला ये था, इंशाल्लाह आपसे रابطہ रहेगा। आपने जो कुछ कहना था वो बिल्कुल हमने एक लफ्ज़ आपका जो है उसको काटा नहीं, जो आपका दिल चाहता है अभी आप बोलना चाहें, जो हमारे दिल में गपशप की शक्ल में मेरी थी वो मैंने आपसे वो बात की। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगे तो आपको बहुत अच्छी लगे, अगर नहीं अच्छी लगती तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता।
जी बहुत शुक्रिया जी आपका, आपके वक्त का और आपके सामीन का। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर।
अल्लाह हाफिज़ जी।
अल्लाह हाफिज़।
सामीन ये थे राशिद नसरुल्ला जो के मियां साहब के साथ होते हैं, वो अपनी बात कर रहे थे, हमने उनको पूरा मौका दिया जो वो बात कहना चाहते हैं खुल के बात करें, उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं। समझ देखें कि जो भी वज़ीर आज़म होता है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता है, डेफिनेट उनको एजेंसियां क्लियर करती हैं तब वो वज़ीर आज़म बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी वज़ीर सबका या मौजूदा वज़ीर आज़म है उनकी जो है वो इज़्ज़त और तौक़ीर का ख्याल रखना चाहिए, और दूसरा अगर गलतियाँ की हैं तो वो कानून कायदा है, उस कानून कायदे को ही फॉलो करना चाहिए। तो आम जो है वो उन्हीं की तरफ जो जन अदालतें इसलिए बनी होती हैं, वकील इसलिए होते हैं, तो जहां ये ईमानदारी होगी इंसाफ होता हुआ नजर आएगा, तो मैं नहीं समझता किसी की जरूरत होगी कि जब इंसाफ हो रहा होगा तो कोई बोलने की जरूरत भी करेगा। बाकी जहां तक मीडिया का सवाल है, मीडिया अगर बिकता है अपने बिक कर अगर लोगों को लड़ाता है अपने पैसे लेने के लिए, आप देख लें कि मीडिया के लोग कितने ज्यादा अमीर हो चुके हैं। तो गौर करनी चाहिए जो हुकूमत के हक में है या अपोजिशन में है, अपोजिशन की फेवर करते हैं, अगर मैं उनमें सरमायादार मीडिया वाले हैं तो उनकी तरफ भी आप सबको सोचना चाहिए। अगर पार्टियों के लीडर आपकी इज्जत या आपकी तौकीर करते हैं तो आपको भी सोचना चाहिए कि जिस पार्टी को आप ज्वाइन करते हैं। बाकी रहेगी पाक फौज की बात, समझने एक चीज़ जहन में रखें कि اتنے بڑے ادارے میں اگر کسی کو فوج کے بارے میں نہیں پتا تو یہ بڑا ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ یہاں فوج میں کوئی ایک آ گیا، فوجی فوج میں آ گیا، غلطی میں آ گیا، تو فوج اس کو نہیں چھوڑتی۔ یہ کورٹ مارشل کیا ہوتا ہے؟ بے شمار افسران کے جو کورٹ مارشل ہوتے ہیں، بے شمار جونیئرز کے کورٹ مارشل ہوتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں میڈیا پر نہیں آتی۔ یہ سرحدوں میں جو کھڑے ہوئے قربانیاں دے رہے ہیں، تو سب جن لوگوں کو چاہیے جب بات کریں، کسی کی بات کریں، تو پھر ایک وہاں تک رکھے، پورے ادارے کو بیچ میں نہیں لانے چاہیے۔ جب آپ پورے ادارے کو لائیں گے تو پھر جو عوام ہوتی ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتی۔ اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو میری غلطی کو کہنا چاہیے کہ میں غلط ہوں، میں غلطی کر رہا ہوں۔ ہم پورے سسٹم کو جو ہے وہ غلط نہیں کہنا چاہیے۔ اگر ایک وزیر اعظم غلط ہے تو سارے وزیر اعظم غلط نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی غلطی کی ہے تو وہ قانون کے دائرے کے اندر رہنی چاہیے۔ غلطی اس وقت جو ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے، جانے کے بعد جو غلطیاں ہیں وہ بڑی مشکل سے سدھاری جاتی ہیں۔ اپنا ملک ہے، سب کو اس کی طرف دھیان دینا چاہیے، صحافی برادران کو بھی، کہ وزرائے اعظم سابقہ یا موجودہ، آرمی جنرلز موجودہ یا سابقہ، سب کو اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جب آپ اپنے ملک کے لیے کام کریں گے تو کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہوگی۔ سمائن ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔